ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 आज हम श्रीमद्भागवतम का तीसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5। कुकुद्विनः अविद्धनसः दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजीतिम् उवाह तद्भग्नमानान् अपि गृध्यत अज्ञान जग्ने अक्षत शस्त्रवृत् स्वशस्त्रैः। कुकुत्मिनो विद्वानोऽसि दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजीतिं मुहाव तद्भग्नमानानपि गृध्यतोऽज्ञा जग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। कुकुद्मिनो अद्विवानसौ दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि गृधोत्यज्ञा जग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। कुकुद्मिनो अद्वित्वमसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानपि गृधोत्प्रज्ञा जग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। ककुद्मिनः बैल जिनकी नाके छिदी नहीं हुई थी, अविद्वनसः नाके छिदी हुई, दमित्वा दमन करके स्वयंवरे दुल्हन चुनने के लिए खुली स्पर्धा में नाग्नजीति राजकुमारी नाग्नजीति को वाह ब्याह तद्भग्नमानान इस तरह निराश हुए को अपि यद्यपि गृत्यतः चाहा अज्ञान मूर्खजन जगने मारा तथा घायल किया अक्षत बिना घायल किए शस्त्रभृत सभी हथियारों से लैस स्वशस्त्रैहि अपने हथियारों से। अनुवाद है, बिना नथ वाले 7 बेलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। भगवान शस्त्रों से अच्छी तरह से लैस थे, अतः उन्होंने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। प्रियम प्रभुर्गाम्य इव प्रियया विदित सुरार छद्म द्रुतम यदर्थे व्रजया दत्तवतम सगणो रुषांध क्रीड़ा मृगो नुयनम वधूना। प्रियम प्रिय पत्नी के प्रभु स्वामी ग्राम्य सामान्य जीव इव सदृश प्रियया प्रसन्न करने के लिए विदित सुरु चाहते हुए आर्चत ले आए द्वितम्ब पारिजात पुष्प का वृक्ष, यत जिसके अर्थ विषय में व्रजी यानी स्वर्ग का राजा इंद्र आद्रव्रत तमह उससे लड़ने आया, सह गण दल बल सहित रुषा क्रोध में अंधा क्रीड़ा मृग कठपुतली नूनम निसंदेह अयम यह वधना स्त्रियों का। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजातक वृक्ष ले आए, जिस तरह की सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, दल बल सहित लड़ने के लिए भगवान का पीछा किया। एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को काम के कुंडल भेंट करने के लिए स्वर्ग लोग गए, तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजातक नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इसे व्रजी अर्थात व्रज का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया, क्योंकि इंद्र स्त्री वश्य पति था और मूर्ख भी था। अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वह भूल गया था कि प्रत्येक वस्तु भगवान का है। यद्यपि भगवान स्वर्ग लोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी सची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्री वश्य होने का कारण से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वश्य पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है, अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया था कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वश्य नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सगणा रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना नथ वाले सात बेलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नग्नजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमार का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। भगवान शस्त्रों से अच्छी तरह से लैस थे, अतः उन्होंने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। और दूसरा प्रसंग उद्धव जी वर्णन करते हैं कि अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात पुरुष लाए, जिस तरह कि सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, दल बल सहित लड़ने के लिए भगवान का पीछा किया। इस अध्याय में उद्धव जी वृंदावन के बाहर की लीला है का स्मरण करते हैं। वृंदावन की लीला और वृंदावन के बाहर की लीलाओं में क्या अंतर होना चाहिए?
वृंदावन की माधुर्य लीला है और वृंदावन के बाहर की ऐश्वर्य तो
बल भी तो ऐश्वर्य होता है। जहां का बल और पराक्रम की ही बातें हैं, लेकिन ये कौन करता है? कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। वृंदावन की लीला भगवान स्वयं ने की, भगवान के कोई विस्तारों ने नहीं की थी। वृंदावन की बाहर की लीला वासुदेव तत्व ने की, क्योंकि वृंदावन की बाहर सभी उनको वसुदेव के बेटे के रूप में ही जानते थे। अवश्य हमें यह सोचना चाहिए कि माधुर्य लीला का तो एक ही व्यक्तित्व होता है, वो कृष्ण। वृंदावन की बाहर की लीलाएं हैं, अभी देखो ऐसी ऐश्वर्यपूर्ण है। यहां उद्धव जी नग्न जीति जो कौशल राजा की बेटी थी, अयोध्या नगरी, कौशल देश यानी कि वो प्रांत होता है उसकी राजधानी, तो राजा और उनकी पुत्री दोनों भगवान की ख्याति सुन चुके थे और भगवान को ही नग्न जीति ब्याहना चाहती थी, और पिता भी कहते कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई अन्य कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं, तो वही हमारा दामाद बने। तो उन्होंने स्वयंवर रचा और स्वयंवर में ये शर्त रखी, सात बिना नथुर हुए बेल ये बेल तो जब छोटा सा वत्स होता है तब बेल बनाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये बेल बेल नहीं है, ये सांड होते हैं। और उनको नाथा नहीं जाता, बेल तो जोतने के लिए उसे नाथते हैं, बहुत आसानी से नत जाता है। और उनके पास भार वहन का ही काम करवाते, लेकिन ये जो हैं वो सांड होते हैं जो बिना नथुए हैं, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से विचरते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं हो सकती। वृंदावन के बेल तो बेचारे भक्त जैसे हैं, इनको हटाओ तभी हट जाते हैं। कभी कभी कोई यदि शरारत करता है तो उसका पीछा पकड़ता है। तो ये सात बेल बिना नथुए इनका दमन करना, ऐसी स्पर्धा रखी, क्योंकि राजा जानते थे कि एक साथ सात सात बेलों को दमन करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि कौन लायक है अपनी बेटी के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना कि यहां स्वयंवर हो रहा है और भगवान की ही कामना करने वाली नग्न जीती है और इनके पिता भी यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ही हमारे दामाद बने, तो भगवान तो अंतर्यामी हैं तो जानते ही। लेकिन फिर भी उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वहां उपस्थित हो गए। उससे पहले बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की लेकिन किसी ने ये सात बेलों का दमन नहीं कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, दोनों ने बाप बेटी दोनों ने भगवान की काफी सराहना की और अपनी इच्छा ही प्रकट की कि आप ही हमारे दामाद बनने के लिए योग्य हैं। नग्न जीति पहले से ही व्रत तप इत्यादि जो कुछ करती हैं तो आपके लिए ही करती हैं। सब वैसे जहां ये मन मिल खा गया तो फिर बेल को नाचने की आवश्यकता क्या थी, सीधे ही शादी कर लेते। नहीं, भगवान अपनी ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब ये सब कुछ स्वीकार्य होते हुए भी जब राजा ने कहा लेकिन हम एक वचन से बद्ध हो गए हैं कि ये स्वयंवर में ये स्पर्धा रखी है, जो ये सात बेलों को नाच सकता है उससे ही ब्याही जाए हमारी बेटी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें मंजूर है। वो अपने भक्त की इच्छा भी पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, चाहे कैसे भी स्पर्धा हो, कैसी भी समस्या खड़ी कर दे। कभी कभी भक्त लोग बहुत सारी समस्या खड़ी करते हैं भगवान के सामने, क्या भगवान वो समस्या का निराकरण नहीं करते क्या? समस्या का निराकरण करने के लिए भक्तों को भगवान के पास ही तो जाना होता है और भगवान सहर्ष समस्या का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी मना नहीं करते। भगवान के नाम में भी सारी समस्याओं को हल करने की सर्वशक्ति, सारी भौतिक समस्या साथ साथ बेलों को नाथना, इनका दमन करना, इनका कंट्रोल करना। भगवान ने अपना कच्छा चढ़ाया और सात बेलों के सामने खड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही सात बेलों के लिए अपने भी सात विस्तार बना दिए। भगवान ने अपने सात स्वरूप प्रगटाए, लोगों को पता ही नहीं चले, वो तो यही समझते हैं कि ये सारे बेल इतने जोरावर हैं, इतने ताकतवान हैं, इधर उधर घूमते हैं, पछाड़ते हैं पांव इत्यादि, धूली में तो पता भी नहीं चलता कि कौन कहां है, इतनी धूल उड़ती है। लेकिन भगवान ने अपने साथ विस्तार करके सात बेलों के साथ इनका तुरंत ही दमन कर लिया। सात बेलों को नाथना होता है, नाथने की प्रक्रिया पता होगी आपको, दो नासिकाओं के बीच में जो पर्दा है उसको छेदना होता है और वहां पित्तल की कड़ी लगाते हैं, लोहा तो खाई खाया जाता है, तो धनुर का इंजेक्शन लेना पड़ता है, इससे बेहतर है वो पित्तल की कड़ी बांधते, बाद में उसमें रस्सी लगा। जब नाक बहुत सेंसिटिव भाग है और दमन वहीं से करना होता है, तो भगवान ने साथ साथ बेलों को तुरंत ही वश में कर दिया और सभी खुश हो गए और दान धूम से भगवान ने ब्याह किया। और क्या क्या हम भेटे नग्नजीत के पिता ने दी, और ऐसा ऐश्वर्य भगवान ने बता दिया। दूसरे प्रसंग में बहुत सारी बातें जो भगवान अपने प्रिय भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनियादारी की दृष्टि से कुछ और ही दिखाई देता है। सत्यभामा का प्रसंग यहां उद्धव जी वर्णन करते हैं। सत्यभामा महारानी रुक्मिणी के बाद दूसरे नंबर की प्रमुख पटरानियों में है। सत्यभामा भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए उसका तरीका थोड़ा टेढ़ा है, जबकि रुक्मिणी महालक्ष्मी बहुत सीधी सादी, बहुत मृदु वचन वाली। यदि भगवान कुछ भी कटाक्ष में बोले तो रुक्मिणी के हृदय को चोट लगती है। भगवान हंसी में फूल की पंखड़ी भी यदि रुक्मिणी पर डारे तो वो बेचारी बेभान हो जाती है, इतनी मृदु महालक्ष्मी है। लेकिन सत्यभामा कुछ उसे उल्टा है स्वभाव वाली है, वैसे बाहर से कठोर लगती है लेकिन भगवान की प्रीति ज्यादा प्राप्त करने के लिए यदि चंद्रावली जैसी वृंदावन में ज्यादा कोशिश करती थी, वैसे सत्यभामा नहीं कोशिश करती। सत्यभामा थोड़ी गर्वीली भी कहलाती है, लेकिन ये सभी राधा रानी की बहिरंग यानी कि वृंदावन की बाहर द्वारका लीला, राधा रानी का ही ये सारा विस्तार बताया जाता है और हर एक में विशिष्ट गुण द्वारा भगवान का ये आकर्षण कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है। तो सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक में गए भगवान, पिकनिक करने नहीं गए, अतिथि को भगवान के कुंडल भगवान ने कान के कुंडल भेंट करने के लिए गए थे। पता है क्या प्रसंग था? अच्छा, उसको राजी करने के नरकासुर, वैसे कहा था कि नरकासुर भी भगवान का ही बेटा था, लेकिन कुसंग से वो राक्षस कहलाता था। देवता योनि में भी दानव भक्त थे और दानव योनि में भी भक्त भक्त, विचित्र है। यानी कि भक्ति स्वतंत्र रहेगी, कहीं भी जाओ हो सकती है, कहीं भी जाओ नहीं भी हो सकती है। जो अपनी अनुकूल योग्यताएं या सब कुछ प्राप्त करके भी यदि कोई उसका भक्ति के लिए सदुपयोग नहीं करता तो भक्ति देवी प्रसन्न नहीं है। तो नरकासुर का भी ऐसा था, नरक चौदस दिवाली के अगले दिन ही मारा था भगवान ने, है ना, है ना, वही नरकासुर। तो वो अदिति का बेटा था, सही, इनको प्रसन्न करने के लिए कान के कुंडल देने से, तो इसीलिए सत्यभामा को भी साथ में ले गए। लेकिन वहां इंद्र के दरबार में उसने पारिजात वृक्ष देखा। पारिजात वृक्ष तो हमारे यहां भी बहुत मिलता है, यानी कि वहां से ही द्वारका जब आया तब वहां से पारिजात वृक्ष का भी फैलावा हुआ। वृंदावन में काफी पारिजात वृक्ष होते हैं, लेकिन पारिजात वृक्ष सिर्फ स्वर्ग में ही होता था। तो वो वृक्ष भगवान ले आए बिना पूछे। तो जब इंद्र को बताया गया कि ये तो और वो बताने वाली भी सची माता थी, तो इंद्र ने कहा कि अरे कौन पृथ्वी के लोग आकर यहां स्वर्ग की मिलकत चुरा लेते हैं, वो चुराने के लिए आए, चलो इनके पीछे करो। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि देखो जो दुनियादारी में फंसे हैं तो अपनी औरत को खुश करने के लिए बहुत आसानी से दुस्साहस भी करते हैं, दुस्साहस करते हैं, इसलिए वो मूर्ख कहलाता है। दुस्साहस करने की आवश्यकता क्या है? यदि आदर्शता में तो पति को सर्वप्रथम भगवान की ओर जिम्मेदारी लेकर अपने आश्रितों की सबकी जिम्मेदारी वहन करनी होती है। जब भगवान से ही शक्ति प्राप्त करता है तो भगवान की जिम्मेदारी सर्वप्रथम आती है। जब आश्रितों का कहा करना शास्त्र का नियम नहीं, आश्रितों को अपने प्रगति के लिए भगवान की ओर मुड़ने का सर्वप्रथम गृहस्थ की जिम्मेदारी बताई जाती है। इसीलिए कहा जाता है इनका सुनो सही लेकिन करो जो गुरु आदेश है उसके अनुसार करो। सुनना चाहिए लेकिन करना और करने के लिए जो सारा निर्णय कि हम क्या करेंगे तो वो भगवान की तरफदारी वाला होना चाहिए। किसी की सिर्फ भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए हम पागल बनेंगे तो ऐसे आश्रितों के पीछे सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। न स्वयं का कोई भक्ति में प्रगति कर सकता है या भगवान की ओर जाने के लिए कोई प्रगति कर सकता है, न तो दूसरों को प्रगति करा सकता है। यानी कि सारा जीवन पशुवत सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए बन जाता है। और जो जीवन का महत्व खो चुकता है इसी तरह, तो वो मूर्ख कहलाता है। मूर्ख कृपण, तो ये दो प्रकार की बातें हैं कि एक प्रकार में हम सामान्य जीव सिर्फ अपने आश्रितों की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति लिए यदि सारा जीवन बिताते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी वाला सारा कार्य ठप हो जाता है। इसीलिए शास्त्र का निर्देश ये है कि आदर्श गृहस्थ को भगवान की ओर की जिम्मेदारी वाला कार्य निपटाने के लिए इन लोगों का सुनना और गुरु के माध्यम से निर्णय लेना। तीसरी दूसरी बात यह है कि पशुवत जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति पर ही निर्भरता है। जब ये सारी पशुता पाशवीयता यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवन, तो स्वर्गलोक में भी है। तो एक तरफ जो कर्तव्य पालन के लिए ब्राह्मण बनने की आवश्यकता है वो जो हम नहीं कर पाते तो उसे कृपणता प्राप्त होती है, माइजरलीनेस। कि जीवन में, मनुष्य जीवन में खास करके भगवान की ओर मुड़ने की जो हमें अवसर प्राप्त होता है उसको गवा बैठे, वो बाद में नहीं आता, वो बाद में नहीं आता। भगवद गीता में श्री प्रभुपाद जी ने ये उद्धृत किया है, जो जीवन में अपना ब्रह्म तत्व जानने के लिए जो सफल नहीं हुआ है वो कृपण कहलाता है, जो सफल होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो सफल नहीं होता वो कृपण कहलाता है कि व्यर्थ जीवन गंवाया सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो तो हर एक जीवन में मिली है और मिलती आ रही है, तो मनुष्य में उसके लिए मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। मनुष्यतर जीवन में भी जब इंद्रिय तृप्ति अनायास ही प्राप्त होती है बिना मेहनत किए, तो मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। नायम देह देह भाजान, देह भाजी यानी कि इंद्रिय तृप्त में लिप्त लेना को देह भाजी कहते हैं। हम पहले तो देह नहीं है और देह के भागी भी कहा, देह को भोगने के लिए हम देह भोगी के माने देह भागी। नायम देह देह भाजान निर्लोक है, कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजाने। कष्टान कामान, कितने कष्ट उठाते हैं, क्या विड़भुज कष्ट उठाते हैं। विड़भुजाने सुअर जो टट्टी विष्टा खाने वाले, क्या ये वो लोग कष्ट उठाते हैं। अरे आसानी से जीते हैं, तपो दिव्यम पुत्र काय, ये वृषभदेव अपने 100 बेटों को उद्देश्य तपो दिव्यम। आज कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं कहेगा कि बेटा तू दिव्य तप कर, पहले ही कह मार गोली तप को क्या बोल क्या। तो ऐसी बात है कि मनुष्य जीवन महामूला अवसर बताया, भगवान ऐसे सामान्य हैंडपेक हस्बैंड अंग्रेजी में कह रहे हैं, स्त्रीवशपति, स्त्रीवशपति के जैसे नहीं है। लेकिन सामान्य मनुष्य इंद्र जैसा भी मूर्ख होकर के ही मानने लगा, इसलिए पीछा। ये नहीं कि इनका ही तो सब कुछ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, क्या स्वर्ग लोग जगत में नहीं है? है तो ये महामूर्ख बन रहा है, महामूर्ख बन रहा है। छोटे से बच्चे ने भी तो उसको एक बार महा किया, फिर भी देखो सची को कहने से वो भगवान से लड़ने आया पारिजातक वृक्ष। लेकिन भगवान भी असली ढंग से ऐसा बर्ताव करते हैं कि आपने भी सत्य बामा का क्यों नहीं इनको रोका? नहीं नहीं, इनको राजी करने के लिए पारिजात वृक्ष लाए, इसलिए क्या हम भगवान को भी इंद्र की बराबरी में रखेंगे क्या? है भगवान के साथ ऐसा बैर नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की दिव्यता, इनका सर्वस्व, इनका सर्वोपरिता, महत्ता, सारी चीजें अपवाद रूप की तो रही है, क्योंकि दूसरा कोई है ही इनके अलावा। इंद्र चाहे उसके वश में वज्र जैसा हथियार भी क्यों ना हो, कि इंद्र के ही वश में वो वज्र रहता है, दूसरे के किसी के वश में नहीं रहता। लेकिन कोई भी भगवान जैसे सर्वोपरि नियंता यानी कि कंट्रोलर वश में करने वाला दिखाई नहीं देता। तो हम यदि छोटी सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसे हमें अभिमान गर्व नहीं लाना चाहिए, लेकिन बहुत आसानी से सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के विषय में बहुत हम थोड़ी भी सफलता प्राप्त करते हैं तो बहुत अभिमान चढ़ जाता है, बहुत गर्विष्ठ हो जाते हैं। तो गर्व पुरंदर हारी, पुरंदर इंद्र का गर्व, वे भगवान बारंबार तोड़ते हैं। यहां कृष्ण भगवान कोई स्त्रीवश पति नहीं थे, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी होते हैं तो किसके वश में हो सकते हैं? वो तो स्वामी है, सभी उनके वश में होने चाहिए। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और वो इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। एक क्यों? इसीलिए वे सत्यभामा पर इतने अनुरक्त नहीं थे, लेकिन सत्यभामा की ये भगवान की जो भक्ति है इतनी विशिष्ट है कि भगवान उसे आकर्षित रहते हैं। भगवान को ऐसी पत्नी सत्यभामा जैसी भक्ति के अन्य रसों में प्रवीणता बताती है तो स्वयं भक्ति के लिए आकर्षित कर सकती है। चाहे वो शुद्ध रस न हो, कि भगवान का आकर्षण बढ़ाने के लिए ईर्ष्या भी काम में आनी चाहिए। वो शुद्ध भक्त हो तो ऐसी ईर्ष्या कर सकता है। जो द्वेष यानी कि भगवान के प्रति द्वेष न हो, लेकिन बाहर से यदि द्वेष हो किसी और पर जो भगवान की अच्छी सेवा करती है, तो भगवान का आकर्षण खींचने के लिए द्वेष भी सेवा में लग जाना चाहिए। लेकिन स्वयं भगवान पर द्वेष न होना चाहिए। तो वहां ये द्वेष प्रेम बढ़ाता है, कम नहीं करता। जबकि अपनी भौतिक दुनिया में ऐसा द्वेष हमेशा सत्यानाश का कारण होता है, सब चौपट कर देता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान पर द्वेष होता है। तो यहां हम ये दो प्रसंग उद्धव जी स्मरण में लाते हैं। इन दोनों में भगवान का ऐश्वर्य की सराहना करते हैं। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति का प्रयोग करता है और भगवान उसी ढंग से हमें प्रत्युत्तर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव विजाम्यम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसम। मनुष्य भगवान की प्रतिकृति है, इसलिए भगवान की लीला में जो जो भाव है हम यहां परछाई के रूप में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो परछाई हमें भगवान के पास नहीं पहुंचा सकती है। परछाई भगवान के पास नहीं पहुंचा सकती, परछाई तो भगवान की नकारात्मक शक्ति है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिका, है ना। तो परछाई में भगवान होते ही नहीं, परछाई तो भगवान नहीं है वो बताती। तो जब हम सारा अनुकरण भगवान नहीं है इस भाव में ही कराकर, तो भौतिकता बन जाती है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बन जाती है। भगवान नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में भगवान है ही नहीं। जबकि ये सारे भाव, मुख्य भाव हो या गौण भाव हो, ये सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं यम क्रोध काम प्रणय सहज आदि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावई सांचिंत्यम तदृशिम तनु मापुरे ते गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजान। भगवान श्री कृष्ण को भजने के लिए ये सारे भाव विशुद्ध भक्ति प्रकट करने के लिए आवश्यक है, लेकिन वो परछाई के रूप में नहीं करना चाहिए। वास्तविकता यानी कि हमारा सर्वप्रथम देहात्म भान नष्ट होकर ही हम वास्तविक ताकि स्तर पर आ सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ परछाई वाला जीवन जीते हैं और मिथ्या अनुकरण करते रहते हैं। ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं। तो किसी को कोई प्रश्न है?
ये अतिथि को जो कुंडल देने गए थे भगवान, इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार करने की कृपा करें।
हमें मालूम नहीं होता, हमने कह दिया।
अच्छा, I'm sorry, मुझे पता नहीं पड़ा,
हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में। शायद किसमें आएगा? नरकासुर का वध उसमें आया,
इंद्र ने युद्ध के लिए भगवान का पीछा किया तो इंद्र के साथ और भी समस्त देवी देवता लोग गए, उनकी बुद्धि भी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं करता था।
जब किसी ने रोका नहीं और उन्होंने देखा होगा कि चलो ये मूर्ख को एक और शिक्षा मिल जाए, देखो तो सही मजा आएगी, वो भी दोनों ठीक है। कभी कभी भक्त लोग विनम्रता से चुप्पी रखते हैं।
आपने बताया कृष्ण तत्व वासुदेव तत्व में क्या अंतर,
कृष्ण और वासुदेव, कृष्ण भगवान के ही तो ये चार चतुर्व्यूह जो कहलाते हैं। और कृष्ण भगवान पूर्ण रूप से ये चारों चार का सम्य यदि देखें तो वो वृंदावन में ही जाने जाते हैं। कृष्ण भगवान को न तो कोई वासुदेव के रूप में वृंदावन में जानता है, न शंकरषण के रूप में जानता है, न प्रद्युम्न या अनिरुद्ध के रूप में। इन चारों की जो लीलाएं हैं वैसे वृंदावन की बाहर ही प्रकट होती है। वृंदावन में कृष्ण भगवान स्वयं इनकी कोई भी सत्तावाचक स्थिति, परम नियंता की स्थिति इत्यादि सब कुछ जानकारी की आवश्यकता किसी को है ही नहीं। वृंदावन कोई इनको नहीं जानता, फिर भी वही तो कृष्ण आदि पुरुष कहलाते हैं। जो गोलोक एवं निवसत्य अखिल आत्मभूत, अखिल आत्मभूत, अखिल यानी के वन एंड ओनली, एकमात्र। लेकिन वो जब विस्तार करते हैं तो सर्वप्रथम वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार में, बाद में शंकरषण को है कि चलो और विस्तार करो, बहुत सारे विस्तार निकलते हैं। विस्तारों की बातें अलग होती है, स्वयं की बात और सारे विस्तारों में स्वयं की सर्वशक्ति हो सकती है। जैसे दीपा चिरे वही दशांतर मव्यपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। आप बाजार में से मोमबत्ती का एक पैकेट ले आओ, सब सरीखी दिखाई देगी है ना, तो सारे समान धर्म वाली है। यस्ताद्र गे चहे विष्णु तया अग्र, सर्वप्रथम कौन विभाती, कौन जली है जिससे सारी मोमबत्तियां जल सकती है, सभी का कैंडल पावर एक सरीखा ही दिखाई देगा, पर हमें निस्बत है प्रथम अग्र। स्ताद्रदेव विष्णु तया है विभाती गोविंदम, तो वो आदि पुरुष होते हैं। इसीलिए वृंदावन के जो कृष्ण है वो आदि पुरुष, इनकी ही हम सेवा करते हैं। भजन सही
भारत में बताया गया है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो इंद्रादि जाकुलम लोग हैं, तो इंद्र के शत्रुओं को वध करने के लिए, फिर वही कभी कभी वही इंद्र करते भगवान भी शत्रु बन जाते हैं।
तो इंद्र माया के चक्कर में जो होते हैं तो कभी इधर कभी उधर, वो तो पहले ही परिस्थिति बनी है। स्वर्ग लोक के देवता भी इधर उधर करा करते हैं।
महाराज इंद्र के चरित्र को हम भक्त लोग कैसे समझ सकते हैं?
इनका अनुकरण नहीं करना। इंद्र बनने की इच्छा हो तो इंद्र को अनुसरण करना पड़ेगा, लेकिन इतने विचित्र कार्य करने पड़ेंगे तो एक बार तो सुअर भी बनना पड़ेगा। तो गुरु की आवश्यकता होती है, वो याद दिलाते रहेंगे। सर्वप्रथम भगवान की प्रति की जिम्मेदारी से अवगत होना, इसीलिए गुरु की आवश्यकता, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करें और अपने आश्रितों का पूर्णतया बहुत कुशलतापूर्वक जहां तक आवश्यक है उतना व्यवहार करे बाहर से, लेकिन अंदर से विरक्त होकर करे। ये तीसरी आवश्यकता भी गुरु के माध्यम द्वारा आप कर पाओगे। और चौथा आदेश ये बताया है कि ऐसे गृहस्थ को सारे जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सिर्फ परिवार वालों के ही। इसी तरह सारी समाज व्यवस्था आदर्श रूप में आएगी। गृहस्थाश्रम जो व्यक्ति आसक्त बनकर सारी व्यवस्था करना चाहता है तो गया काम से, अनासक्त बनकर करे। अनासक्ति तो सर्वप्रथम आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। जब अनासक्त नहीं है तो देहात्मान भी नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। भगवान के पास पहुंचने का तो अनासक्त भाव वो गुरु के माध्यम से ही सीखना। करो काम एक्सपर्ट, लेकिन जहां तक ये आवश्यकताओं की पूर्ति है उतना है, और वो तो उसमें आसन लिपटने की आवश्यकता क्या है। मूल कर्तव्य तो भगवान की ओर सबको ले जाने का है। यदि गृहस्थ स्वयं ही आसक्त बनकर लिपटेगा तो वो भी गिरेगा और दूसरों को गिराएगा, सही ना? ये चार मुख्य कार्य बताए हैं। भौतिक द्वेष हो, भौतिक द्वेष है, भौतिक द्वेष, भौतिकता वाला जो द्वेष है वो भगवान का, भगवान से द्वेष करके हम आए हैं। लेकिन भक्ति में जब कॉम्पिटिशन है, चलो कुछ स्पर्धा रखी है, तो स्पर्धा में दूसरे को, दूसरे से आप आगे निकल जाओ, ऐसी तो भावना होती है ना, मैं पहला आ जाऊं। यानी कि वहां मिथ्या अहंकार नहीं होता, मैं भगवान की ओर सेवा करूं और इसे भी बढ़तर करूं। तो ये क्या भगवान की सेवा का, सेवा में कोई द्वेष भावना थोड़ी है। लेकिन ये जो परछाई के रूप में होगा तो अवश्य भगवान के साथ का द्वेष बताया जाता है, ये तो भगवान की तरफदारी वाला द्वेष। जो द्वेष भगवान की सेवा कर सकता है तो आप चलो भगवद गीता मैराथन हो गई है, कल आपने 100 गीता बांटी है, आप 150 बांटो, जाओ घुसपीट करो और ताकत अजमाओ, देखूंगा। तो भगवान की सेवा में ये जो उत्साहवर्धन होना चाहिए, तो ऐसा कॉम्पिटिटिव भाव द्वेष का ही तो है,
सकारात्मक द्वेष,
सकारात्मक जय श्री प्रभुपाद की।